लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वेटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम हिंसा से पीड़ित महिलाओं के लिए प्रार्थना करते हैं, ताकि समाज से उन्हें सुरक्षा मिले और उनकी पीड़ाओं पर ध्यान दिया जाए। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है रविवार कार्यक्रम भक्ति गीत एवं चेतना जागरण। कार्यक्रम प्रस्तुता हैं सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की एवं सिस्टर अनुग्रह मिंज। श्रोताओं, रविवार कार्यक्रम के अंतर्गत ईश सेवक फादर कॉन्स्टेंट लेबल्स की जीवनी एवं छोटानागपुर मिशन की शुरुआत पर एक चर्चा प्रस्तुत कर रहे हैं। बेल्जियम के जेसुइट मिशनरी फादर कॉन्स्टेंट लेबल्स ने अथक परिश्रम एवं त्याग से छोटानागपुर में ख्रिस्त की ज्योति जलाई और यहाँ के पीड़ित एवं उपेक्षित लोगों को जीने का रास्ता दिखलाया। निराशा और पीड़ा भरे समाज में न्याय, समानता एवं मानव प्रतिष्ठा के मूल्यों को बढ़ावा दिया, जिसके कारण आदिवासी अपनी दयनीय स्थिति से ऊपर उठने लगे। आज हमारा दायित्व है कि हम फादर लेबल्स द्वारा जलाई गई ज्योति को प्रज्वलित रखें और समाज को बेहतर बनाएं। पिछले कार्यक्रम में हमने फादर लेबल्स के 12वें दौरे के बीच से वापस रांची लौटने के बारे सुना था। आज हम सुनेंगे कि सरकारी अधिकारी उनसे क्या चाहते थे। सरकार नहीं चाहती थी कि मिशनरी छोटानागपुर की जटिल भूमि प्रणाली में दखल दें, चाहे उनका हस्तक्षेप आदिवासियों को न्याय दिलाने से संबंधित क्यों ना हो। वह चाहती थी कि मिशनरी आध्यात्मिक बातों को भौतिक बातों से न मिलाएं। जमीन के मामले में मिशनरियों के हस्तक्षेप पर सरकार की आपत्ति और हर कीमत पर शांति बनाए रखने हेतु उनके उद्देश्य एवं प्राथमिक रुचि जमीन मामले और जमीन किराएदार संबंध जिला की शांति भंग होने के लिए लगातार खतरे थे। फिर भी सरकारी अधिकारियों ने अपने मनोभाव एवं नीति से आदिवासी लोगों में ऐसा भाव डाला था कि वे जमींदारों के हित में थे, जो सरकार को आमदनी प्राप्त करने में मदद देते थे। लोगों ने भी इससे महसूस किया कि जब जमींदार अनैतिक थे तथा किराएदारों का शोषण करते थे, तब भी सरकारी अधिकारियों ने उन्हें कुछ नहीं कहा। यहाँ तक कि उन्होंने मिशनरियों को भी उनकी मदद करने से रोकने का प्रयास किया, ताकि वे सरकार से अपने लिए न्याय की मांग न कर सकें। दूसरी ओर जमींदार मिशन और आदिवासियों के लिए मिशनरियों के कार्य में रुकावट डालने का हर संभव प्रयास करने लगे। जैसे जैसे मिशन फैलता गया, जमींदारों की घबराहट बढ़ती गई, क्योंकि ख्रिस्ते लोग कोर्ट में केस जीत रहे थे, जबकि जमींदार कोर्ट जाने का साहस भी नहीं करते थे, और अगर जाते भी थे तो केस हार जाते थे। इस तरह जमींदार वर्ग का प्रभुत्व खतरे में हो गया था। उनके लिए मिशन के विकास और लोगों के ख्रिस्त धर्म अपनाने का अर्थ था किराएदारों की संख्या में कमी। जमींदार सरकारी अधिकारियों के मनोभाव को समझने लगे थे, जो हर कीमत पर जिला में शांति बनाए रखना चाहते थे, पर उन्हें गलत फहमी थी कि वे सरकारी अधिकारियों को मिशनरियों एवं उनके कार्यों के खिलाफ सोचते थे और उम्मीद करते थे कि सरकारी अधिकारी उनके विद्रोही किराएदारों के खिलाफ शिकायत पर उनकी बात सुनेंगे। यह सोचकर जमींदार मिशन के खिलाफ पुलिस में शिकायत करने लगे, पर इसके विपरीत उन शिकायतों को प्राप्त करने के बाद कमिश्नर और अन्य अधिकारी रांची में जेसुइट पुरोहितों के सुपीरियर फादर मोटेट को उसके बारे बतलाने लगे। वे ऐसा इसलिए करते थे ताकि मिशनरियों को अपनी सफाई देने का अवसर मिले, और साथ ही जब जांच हो तो उन्हें दोनों ओर की कहानी मालूम हो। 1887 और 1888 में उन शिकायतों को शांतिपूर्ण और सहयोग के साथ निपटाया गया। कमिश्नर लिलिंगस्टन ने उन मामलों को खूंटी, तोरपा, बसिया और पालकोट की यात्रा के दौरान निपटाया। कमिश्नर स्टेवन भी किसी शिकायत पर काम करने से पहले मिशनरियों को हमेशा सूचना देते थे। वे भी मिशनरियों, खासकर फादर मोटेट के बहुत करीब थे। वे निष्कपट एवं खुले व्यक्ति थे तथा उसी तरह का व्यवहार पसंद करते थे जो फादर मोटेट एवं फादर लीबन्स के स्वभाव में था। अतः सरकारी अधिकारियों एवं मिशनरियों के बीच आपसी भरोसा बढ़ गया था। फादर लीबन्स कानून में पक्के बने रहना चाहते थे, जिसको बढ़ावा देना सरकारी अधिकारियों का कार्य था। अतः सरकारी अधिकारी उनके सिद्धांतों पर रोक नहीं लगाते थे। सरकारी अधिकारियों एवं फादर लीबन्स के विचार तभी अलग हो जाते थे जब वे आध्यात्मिकता और अलौकिक या लौकिक चीजों से संबंधित होते थे। फादर लीबन्स एवं अधिकारियों को इन स्थितियों के बारे स्पष्ट ज्ञान था। सरकार को शुद्ध आध्यात्मिक बातों पर हस्तक्षेप नहीं करना था, जिसको वे मानते थे एवं उसका सम्मान भी करते थे, किंतु भौतिक और आध्यात्मिक रुचि के बीच सक्रिय संबंध को स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा रहा था। सरकारी अधिकारी जैसे कमिश्नर स्टेवन जो मिशन कार्य में मैत्री का मनोभाव रखते थे, उनका भी सामान्य विचार एवं मनोभाव यह नहीं था कि एक पुरोहित जमीन के सवाल से संबंधित मामले में हस्तक्षेप करे। अतः उन्होंने कहा कि कोई भी मिशनरी जो लोगों की भलाई के लिए उत्साहित है, वह उन्हें जमीन के कानून का विरोध करने के लिए प्रेरित ना करे। श्रोताओं, रविवार कार्यक्रम के अंतर्गत ईश सेवक फादर कॉन्स्टेंट लीबन्स एवं छटरनागपुर में कलीसिया की शुरुआत पर एक चर्चा सुन रहे थे। इस पर हम चर्चा जारी रखेंगे और अब आइए सुनते हैं आज का भक्ति गीत।
आज चेतना जागरण कार्यक्रम में प्रस्तुत है इंदौर सत्य प्रकाशन केंद्र द्वारा तैयार नाटक वह स्नेहमय ज्योति। लेखक हैं कृष्णकांत दुबे। श्रोताओ, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज ही उसका कर्म क्षेत्र है। अतः उसे स्वयं को समाज के लिए उपयोगी बनाना पड़ता है। वास्तव में परोपकार और सहानुभूति पर ही समाज स्थापित है। सब अपने अपने स्वार्थ का थोड़ा बहुत त्याग करके समाज को स्थिर रखते हैं। उदाहरण के लिए, संत मदर तेरेसा ने मानवता की सच्ची सेवा के लिए अपना मूल देश त्याग दिया, जो गरीबों की हमदर्द बनकर उभरी और जिसने हजारों अनाथों, दीनों और निराश्रयों को सहारा दिया। स्वामी विवेकानंद ने भारत भ्रमण के बाद अपनी आर्षवाणी में कहा था, दरिद्रों की सेवा ही ईश्वर की सेवा है। शहरों में गरीबों और जरूरतमंदों, अनाथों, विधवाओं की सेवा के लिए कई संस्थान और सेवा केंद्र खोले गए हैं। अभी भी गांवों और कस्बों में गरीबों और जरूरतमंदों, बीमारों और कोढ़ियों की निस्वार्थ सेवा करने वाले लोग मिल जाते हैं। अपने प्रेम और निस्वार्थ सेवा से वे उन गरीबों का दिल तो जीत लेते हैं, साथ ही आस पड़ोस के लोग भी उनकी सेवा भाव से अछूते नहीं रह पाते। जो लोग निस्वार्थ भाव से दुखियों की सेवा करते हैं, वे लोकप्रिय बन जाते हैं। ऐसे लोग मरकर भी अमर हो जाते हैं। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसे ही माता की कहानी, जिसने कोढ़ियों की सेवा में बेटे, बहू और आराम की जिंदगी को त्याग दिया। तो आइए सुनते हैं श्रीकांत दुबे की लिखी नाटिका, वह स्नेहमय एक ज्योति।
वह माँ थी, एक स्नेहमय ज्योति। सबने उससे प्रकाश पाया, हाँ सभी उसे नमन करते थे। उसने दुखियों के चेहरों पर मुस्कान भर दी, उन्हें आश्रय दिया। उसका जीवन इसी रूप में व्यतीत हुआ। हाँ, आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उसकी कथा हम सबकी जुबान पर है। वह एक दिन था, दिन समाप्त हो रहा था, वे हमारे घर आई थी। अरे चाची आप, आइए आइए, मैं अभी आपका ही इंतजार कर रही थी। आज हमारी टिफिन बारी का जो दिन है।
अरे लगता है सुषमा, तुमने आज पूरे मन से मुझे याद किया, और देख मैं आ भी गई।
जी हाँ चाची, हम लोग, हमारा मोहल्ला, हमारा ये गांव आपको हमेशा याद करता है। हर द्वार प्रतीक्षा करता है आप आए, आप आए और हमें आशीर्वाद दें।
अरे मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तुम लोगों के साथ है सुषमा। प्रभु हमेशा तुम्हें प्रसन्न रखे, तुम्हारे मन में ऐसा प्रेम भाव, ऐसा सेवा भाव सदा बना रहे। लेकिन आज कुमार दिखाई नहीं दे रहा।
बस आते ही होंगे चाची, यही तो वक्त है उनके काम से लौट आने का।
ये लो, मैंने कुमार को याद किया और वह आ भी गया।
आपकी वाणी में तो शक्ति है चाची, आपके अंदर का लहराता प्रेम सबको खींच लाता है।
अरे अरे चाची, चाची आप पाए लगू चाची।
अरे खुश रहो बेटा कुमार, प्रभु तुम्हारे मन को हमेशा नेक रखे, तुम्हारे मन में हमेशा सबके लिए प्रेम रहे।
चाची इस बार आपको मैं बहुत दिनों बाद देख रहा हूँ।
अरे हाँ, मैं टिफिन के लिए निर्धारित दिन तुम्हारे यहाँ तो आ ही जाती हूँ कुमार, और फिर जब भी तुम लोग मुझे याद करते हो और जब भी कभी आश्रम का कोई काम होता है, मैं तो भाई तुम्हारे यहाँ आ ही जाती हूँ।
वो तो ठीक है सुषमा, लेकिन तुमने चाची का स्वागत किया कि नहीं?
अरे कुमार अब बस भी करो, मेरा तो एक ही स्वागत है जिसे तुम दोनों जानते हो, सेवा और मदद, और वो भी आश्रम के लिए।
बस आपका यह प्रेम स्नेह बना रहे, हम सब करेंगे। हाँ मैं आपको बता दूं, मैंने आश्रम के लिए पहले से ही टिफिन तैयार कर दिया है। कुमार आप अपने स्कूटर पर चाची को टिफिन के साथ ले जाना।
अरे सुषमा, हर बार की तरह मुझे 6 घरों के टिफिन आश्रम ले जाना है, इसमें मैं किसी और की भी मदद ले लूंगी। अब कुमार बेचारा तो अपने काम से अभी अभी तो लौटा है, बेचारा थका मांदा होगा, उसे रहने दो।
अरे चाची आप भी कमाल करती हैं, आपका काम करने में भला किसे तकलीफ होगी।
आप आधी रात कहें, हम आपके हर पुण्य काम के लिए तैयार हैं।
अरे पगली, तुम ही लोगों का तो एक सहारा है मुझे, तभी तो इस गांव का यह छोटा सा कुष्ठ आश्रम ठीक से चल रहा है। अब कुछ डॉक्टरों का साथ है और गांव वाले तो साथ हैं ही।
नहीं चाची, आप कितने समर्पित भाव से उनकी सेवा कर रही हैं। उन कुष्ठ रोगियों का आत्मविश्वास, उनका सहारा तो आप ही हैं।
यह तो मेरे उस प्रभु की प्रेरणा है जिसने मुझे यह सेवा कार्य सौंपा। मैं उन लोगों के लिए कुछ कर पाऊं बस यही मेरे लिए बहुत है। उनकी सेवा में ही जीवन गुजर जाए और मुझे कुछ नहीं चाहिए।
लेकिन मैंने सुना था चाची, बेंगलोर से आपको लेने मनीषा आया था। अब तो वह बहुत बड़ा आदमी है, वहाँ वो शायद सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। विदेशों से तक उनके बहुत बहुत कॉन्टेक्ट हैं।
मुझे मालूम है कुमार, मनीष अपने परिवार के साथ अपनी इन माँ को लेने आया था। खूब मिन्नतें की, लेकिन हमारी ये चाची अपने बेटे के साथ नहीं गई, सो नहीं गई।
लेकिन चाची, आप उसके साथ क्यों नहीं चली गई? हम सब जानते हैं पिता विहीन मनीष को आपने कितनी कठिनाइयों के बीच पाला, उसे पढ़ाया लिखाया, आज वह नामी इंजीनियर है।
अरे मैंने क्या किया, यह सब तो उस प्रभु का आशीर्वाद है कुमार।
मनीष बड़ी आशा से आपको लेने आया था, आप उसके साथ नहीं गई, जाते समय वो कितना निराश था, यह मैंने खुद देखा है चाची।
अरे सुषमा बेटी, मेरे न जाने से वो एक ही बेटा निराश हुआ, लेकिन क्या कभी तुमने सोचा है इस आश्रम के वासी कितने निराश होते अगर मैं मनीष के साथ चली जाती तो।
लेकिन चाची, अपनी माँ पर अपने बेटे का भी अधिकार होता है।
अब देखो कुमार, मनीष को तो ईश्वर ने सभी कुछ दे दिया, लेकिन मेरे मन ने कहा कि उन्हें सांत्वना दो, सुख दो, आश्वासन दो, प्रेम दो, जिन्हें इसकी जरूरत है। यहाँ के इस कुष्ठ आश्रम को अभी मेरी जरूरत है। कुछ ही समय हुआ है इस आश्रम की स्थापना को, अब जब यह सुचारू रूप ले लेगा तब सोचूंगी कि विराम लूं या नहीं। लेकिन एक मन कहता है कि अंतिम समय तक प्रभु का यह काम मैं करती रहूं। बस।
हाँ चाची, यह भी सच है, आपके कुष्ठ सेवा व्रत ने इस रोग के बारे में फैली गलत धारणाओं को काफी हद तक दूर किया है।
यही नहीं चाची, आपने हमारे इस गांव को कई नई सही दिशाएं भी दी हैं।
अरे नहीं रे सुषमा, यह सब कुछ तो प्रभु की प्रेरणा से हुआ और मुझे ये पूरा विश्वास है कि ये काम आगे बढ़ेगा और सब कुछ अच्छा होगा। कुमार चलो अब चलें, आश्रमवासी मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे।
चाची आपको नमन, आपके प्रभु प्रेम और आपके सेवा व्रत को नमन।
हाँ बेटी, तुम्हारे इस परिवार पर सदैव प्रभु की आशीष बरसती रहे, यही कामना यही मेरी इच्छा है।
हाँ आज चाची हमारे बीच नहीं है, लेकिन हमारे गांव में उनका लगाया सेवा व्रत वह वृक्ष फल फूल रहा है। शायद प्रभु ने उन्हें इस धरा पर मानवता की सेवा के लिए ही भेजा था। वे स्नेहमयी एक ज्योति थी, वह ज्योति आज भी हमें प्रकाश दे रही है।
वह स्नेहमय एक ज्योति, अभी अभी आपने यह नाटिका सुनी। इसके कलाकार थे सिंड्रेला जोसेफ, दिव्य देवस्य और दिनेश डावर। इंदौर सत्य प्रकाशन केंद्र की इस प्रस्तुति के साथ ही हमारा आज का प्रसारण समाप्त होता है। नमस्कार।